आरव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कोई लैंड देखी थी, लेकिन उसका मालिक उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। आरव की पर्सनालिटी एंटी सोशल थी, जो लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते आरव ने बाहर जाने का डिसीजन लिया। उसका कजिन वेद अभी भी उसके इस फैसले से हैरान था। आरव ने बाहर जाने का कहा तो वेद जल्दी से नीचे आया और नीचे आते ही चिल्लाकर बोला, नानी मामी जल्दी बाहर आइए, आपको यकीन नहीं होगा हमारा खड़ूस खुराना बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। वेद की बात सुनकर जसलीन और प्रिया जल्दी से बाहर आईं। उन्हें भी एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। जसलीन ने आंखें बड़ी करके कहा, नहीं मैं नहीं मान सकती कि वो लड़का अपने फ्लोर से बाहर निकालने के लिए मान गया। जरूर तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हाँ मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अच्छे से याद है पिछली बार उसे बाहर निकालने के लिए मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया था, लेकिन उसने डॉक्टर को घर बुला लिया। उसके बाद तो उसने हद ही कर दी थी, अपने फ्लोर पर एक हॉस्पिटल रूम तक तैयार करवा लिया। प्रिया ने कहा, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरव बाहर निकलने के लिए मान गया। वेद ने कंधे उचकाकर कहा, वैसे इसका क्रेडिट हमें मिस्टर अर्जुन सिंह ओबेरॉय को देना चाहिए। एक तरफ उन्होंने मोहाली वाली जमीन देने से मना किया, दूसरी तरफ हमारे खड़ूस खुराना के अंदर का गुस्सा जाग गया। वो खुद डील करने के लिए जा रहा है। फिर वेद कुछ सोचते हुए अपना हाथ आगे करके बोला, क्या कहते हो नानी और मामी, हो जाए 10,000 की शर्त? अगर हमारे खड़ूस खुराना ने डील कर ली तो मैं आप दोनों को 10,000 रुपये दूंगा। अरे ये तो सरासर हार का सौदा है, तुम लोगों ने 5वीं बार उसके सामने ऑफर भेजा था, फिर भी उस इंसान ने मना कर दिया। तुम क्या चाहते हो ये शर्त लगाकर हम हार जाएं? प्रिया ने जल्दी से जवाब दिया। प्रिया के मना करने के बाद वेद उम्मीद भरी नगाहों से जसलीन की तरफ देख रहा था। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, चलिए ठीक है, लगी शर्त। अगर कोई और जाता तो एक बार के लिए फिर भी सोच लेती कि ये डील पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आरव खुद जा रहा है तो पक्का करके ही आएगा। वो आपस में बातें कर रहे थे तभी आरव लिफ्ट से बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जेल से परफेक्टली सेट किए हुए बाल, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स के साथ वो काफी हैंडसम लग रहा था। अगर आप सबका शर्त लगाना हो गया हो तो चलें वेद, आरव ने लिफ्ट के पास से ही तेज आवाज में कहा, जिसके बाद वेद दौड़कर उसके पास चला गया। जाने से पहले आरव ने प्रिया और जसलीन की तरफ देखा, जो उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। आरव ने उन्हें देखकर सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अगले 3 घंटे बाद वेद और आरव एक बड़ी सी पुराने जमाने की हवेली के आगे खड़े थे। वो हवेली मिस्टर अर्जुन सिंह ओबेरॉय की थी, जिसके आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। आरव ने हवेली को एक नज़र देखा और फिर वेद की तरफ देखकर बोला, वैसे इस हवेली को भी अगर होटल में कन्वर्ट किया जाए तो हमारा काफी फायदा होगा। ये बात गलती से भी तुम मिस्टर ओबेरॉय के सामने मत बोल देना, वरना वो तुम्हारी लाश टंगवा देंगे इसी हवेली के बाहर। पहले ही बोल रहा हूँ, सोच समझ कर बात करना, काफी गुस्से वाले इंसान हैं। अंदर जाने से पहले वेद ने आरव को सचेत किया, भूल रहे हो कि इस वक्त तुम आरव खुराना के सामने बैठे हो, जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक मैं ये डील पाकर रहूंगा। तुम दादी और मम्मी से छोटी मोटी शर्तें लगा लेते हो, आज मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ 1 करोड़ रुपए की। अगर मैंने ये डील नहीं की तो इसी वक्त मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, आरव बोल रहा था तभी वेद में उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, बस बदले में तुम मेरे फ्लोर पर कदम मत रखना, आरव ने सख्त आवाज में कहा और गाड़ी का दरवाजा खोला। अजीब एंटी सोशल इंसान है, पता नहीं इसका क्या होगा, वेद ने बड़बड़ाकर कहा और फिर आरव के पीछे जाने लगा। अर्जुन सिंह ओबेरॉय भी कोई छोटी हस्ती नहीं थे, चंडीगढ़ में उनकी काफी सारी जमीन थी जिन्हें खरीदने के लिए बहुत से लोग आते थे, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी कभी किसी जमीन को नहीं बेचा था, वो अपने उसूलों के पक्के थे। आरव और वेद हनेली के अंदर पहुंचे, उनके आने की खबर पहले ही दे दी गई थी, इसीलिए मिस्टर अर्जुन सिंह ओबेरॉय उनके आने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन सिंह ओबेरॉय ने जब पहली बार आरव को देखा तो वो उसकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुए। आरव को देखते ही मिस्टर ओबेरॉय बोले, तुम तो युवराज खुराना के बेटे हो ना, जहां तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम सामने से आकर कभी डील नहीं करते, लगता है तुम्हें मेरी जमीन कुछ ज्यादा ही प्यारी है जो यहां तक आ गए। वैसे बता दूं कि तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान भी आ जाए तो भी मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। और उसकी वजह, आरव ने सीधे सीधे पूछा, उसे डील करनी थी इस वजह से वो बात को घुमा फिरा कर नहीं करना चाहता था। लगता है तुम्हारे आदमियों ने बताया नहीं, वो जमीन मेरी बेटी के नाम है और शादी के बाद उसके पति और उसमें आधी आधी बढ़ जाएगी। अब अगर जवाब मिल गया हो तो तुम जा सकते हो, वैसे हमारी हवेली में आया हुआ शख्स बिना खाए पिए नहीं जाता है, तो खाना खाकर जाना, मिस्टर ओबेरॉय ने काफी नरमी से जवाब दिया और वहां से जाने लगे। तभी आरव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, ठीक है फिर, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं?
आरव ने सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे सुनकर वेद को झटका सा लगा। वो गिरने वाला था तभी आरव ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। जितना अजीब वेद को लगा उतना ही मिस्टर ओबेरॉय को भी लगा था। वो आरव की तरफ मुड़े और हैरानी से सिर हिलाकर कहा, मैंने तुम्हारे खानदान और तुम्हारे बारे में काफी सुना है। कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है ये कि एक जमीन के चलते तुम शादी करने तक तैयार हो गए। आरव ने बिना सोचे समझे जवाब में कहा, हाँ ये सच है कि मैं शादी उस लैंड के लिए कर रहा हूँ, बट मैं कभी आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लड़का आपके सामने खड़ा है, दिखने में कोई कमी नहीं है मुझमें, और इतना काबिल हूँ कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 2 मिनट है हाँ या ना कहने के लिए। आरव वहाँ पूरे एटीट्यूड से बात कर रहा था। मिस्टर ओबेरॉय ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ पल सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। वेद को लगा जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। अचानक आरव का शादी के लिए कहना और फिर मिस्टर ओबेरॉय को तुरंत बिना सोचे समझे हाँ कहना, उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वहीं जब मिस्टर ओबेरॉय ने शादी के लिए हाँ कहा तो ऊपर उनकी बेटी खड़ी थी और उसने धीरे से कहा, मर गए। आई होप आपको नई शुरुआत पसंद आई होगी। आप बताना आपको कैसा लगा पाठ।